ओम शांति। सच्चे दिल पर साहिब राजी आज स्पष्ट करेंगी हमारे बीच। पधारे बाबा की बगिया के वो चैतन्य पुष्प जो सदा मुस्कुराते रहते हैं और यज्ञ की कारोबार बड़ी ईमानदारी से संभालते हैं। आप यज्ञ के कुशल वक्ता हैं। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। बाल्यकाल से ही आध्यात्मिकता की स्वर लहरी में रची और बसी। आपने MBBS किया मानव समाज की कर्मठ सेवाओं के लिए। उसके पश्चात उदयपुर, कोटा, इंदौर इत्यादि कई स्थानों पर आपने प्रैक्टिस भी की। अपने ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में भी आपने 10 वर्ष एज ए डॉक्टर सेवाएं दी। लेकिन तन की सेवाओं से आपको मन की सेवाएं ज्यादा अच्छी लगी। आप डबल डॉक्टर बने। आपने मुख्यालय में सेवाएं देना प्रारंभ किया और आपका ये सौभाग्य रहा कि मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के साथ का भी आपके पास बहुत अनुभव है, अंग संग रहे। और आप महिला विंग मुख्यालय कोऑर्डिनेटर भी हैं और BIP की भी सेवाएं करते हैं। आदरणीय दीदी राजयोग शिविर भी कराते हैं। तो अभी दीदी से सुनेंगे सच्चे दिल पर साहिब राजी।
ओम शांति, ओम शांति। सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा हमेशा हमें ये कहते हैं कि अगर सच्चे दिल हैं तो दिल वाला बाप हमसे हमेशा राजी रहता है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है। तो पहला शब्द ही उनकी महिमा में सत्य आता है, इसलिए हम कहते हैं ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है। या हम उनको सत बाप, सत टीचर, सत गुरु के रूप में याद करते हैं। तो सत्य शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो सच्चा है और दूसरा अविनाशी। सत मना अविनाशी। तो शिव बाबा दोनों ही हैं, सत्य भी हैं और अविनाशी भी हैं। और जो प्राप्तियां भी हमें बाबा से होती हैं वो भी अविनाशी प्राप्तियां हैं। अविनाशी भाग्य हमें बाबा से मिलता है जो अनेक जन्मों तक हमारे साथ वो प्राप्तियां और भाग्य जाता है। या बाबा से जो हमें परिवार मिला है ये भी अविनाशी प्राप्त है, क्योंकि अनेक जन्मों तक हम आत्माएं ही इस परिवार में आने वाले हैं। अभी तो ईश्वरीय परिवार है, फिर हमारा वो दैवी परिवार होगा। और शिव बाबा ही हमें सत्य ज्ञान देते हैं, जिस सत्य ज्ञान से सतयुग की स्थापना होती है। अब तक जो भी भक्ति में ज्ञान सुना वो सारा मिक्सचर, बाबा कहते हैं उसमें कई झूठी कथाएं हैं, लेकिन बाबा ही आकर के हमें सत्य ज्ञान सिद्ध करके बताते हैं। और शिव बाबा ही हमें सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा अभी हम सुन रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति करते हैं। और सत्य के लिए ही कहते हैं कि सत्य की नाव हिलती है डुलती है लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। तो जो सत्य के मार्ग पर चलता है आज कलयुग के जमाने में, जिसके लिए कहते हैं ये संसार कैसा है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो कलयुग में तो एक इंसान भी ऐसा नहीं है जो झूठ का सहारा ना लेता हो, लेकिन उस युग में जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो मार्ग उसके लिए बहुत कठिन होता है, मुश्किलों भरा होता है ना। और इसीलिए लोग कहते हैं कि जो सच्चे और ईमानदार हैं उनकी कोई पूछ नहीं होती है, लेकिन जो थोड़ा चतुराई से चलते हैं, हेरा फेरी करने वाले होते हैं, वो ज्यादा सफल होते हैं या ज्यादा संपन्न या समृद्ध होते हैं, जो आजकल के समय में हम देखते हैं। तो बाबा के ज्ञान में भी जब हम आते हैं तो हमने सत्य मार्ग को पकड़ लिया तो मुश्किलें तो आनी शुरू हो जाती हैं, आती ही नहीं आती है ना। तो हम भी उन मुश्किलों का, विघ्नों का सामना करते हैं, लेकिन विजय किसकी है, भले ही थोड़ा हलचल होती है लेकिन विजय किसकी है। जैसे कहते ना, सत्यमेव जयते, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी कभी भी नहीं। तो अंतिम विजय तो हमारी ही है, क्योंकि एक तो सत्य के मार्ग पर हैं और दूसरा साथी कौन है, स्वयं भगवान हमारा साथी है। तो थोड़ा मुश्किल विघ्न उनका सामना करते हुए भी हम माया पर विजयी बन जाते हैं, प्रकृति पर भी हम विजयी बन जाते हैं, विघ्नों पर भी हम विजयी बन जाते हैं। तो जैसे कहा कि भले ही सत्य में मुश्किल आती है लेकिन विजय हमारी ही है और निश्चित ही है। एक छोटी सी इसके ऊपर कहानी आती है कि एक बार एक राजा, उसको कोई संतान नहीं थी और उसकी उम्र हो रही थी, तो उसने सोचा कि मुझे अपने राज्य के लिए एक वारिस ढूंढ लेना चाहिए। तो उसने घोषणा की अपने राज्य में, उसने सोचा अपने राज्य में ही जो युवक हैं उनमें से ही किसी एक को मैं वारिस उत्तराधिकारी बना देता हूँ, पर अब उसको उसमें से सेलेक्ट करना है कौन योग्य होगा उसके। तो उसने घोषणा कर दी कि कितनी आयु के युवक, ना लगभग 20 से 25 साल की उम्र के युवक इस समय दरबार में आएंगे, और उद्देश्य भी बताया कि उनको क्यों बुलाया जा रहा है। तो पहुंचे उसके राज्य के जो भी उस उम्र के युवक थे, तो उसने उनको सारा बताते हुए और कुछ बीज दिए, कहा आपको ये मैं बीज दे रहा हूं और इस परीक्षा में जो सफल होगा वो ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो ये बीज जो हैं वो आपको गमले में अंकुरित करने हैं, और जिसका पौधा सबसे हरा भरा होगा, सुंदर फूलों वाला होगा, वो मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो बीज दे दिए गए सभी को और सब लेकर चले गए, और फिर हरेक ने उन बीजों को अपने गमलों में जाकर के बोया, लेकिन देखा कि कुछ उगता ही नहीं है। एक हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, कुछ उगता ही नहीं है। तो उनको लगा अगर कुछ उगेगा ही नहीं तो हमारा गमला हरा भरा कैसे होगा, फूल कैसे आएंगे और कैसे हमारा चुनाव होगा। तो सबने क्या किया, बाजार से दूसरे बीज ला करके वो गमले में बो दिए, और निश्चित है वो बीज तो फिर उगते ही हैं। तो हरेक ने बहुत मेहनत से अपने गमले को हरा भरा किया, उसमें फूल भी आने, क्योंकि 6 महीने का टाइम दिया राजा ने। लेकिन जो एक युवक था उसने कुछ नहीं किया, उसने देखा नहीं उग रहा है, थोड़ा निराशा तो हुई उसको कि क्या कमी है मेरी देखभाल में, मैं इसको पानी भी दे रहा हूँ, उसको मैंने धूप में भी रखा है, खाद भी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ उग नहीं रहा है। अब नहीं उग रहा है तो ठीक है, जो भी परिणाम होगा, क्योंकि अब जो है सो यही है, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो वो लगा रहा, 3 महीने हो गए तो भी कुछ नहीं हुआ, 6 महीने हो गए तो भी कुछ नहीं हुआ, अब ठीक है नहीं हुआ तो। तो सब 6 महीने के बाद राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने देखा कि सबके गमले बहुत सुंदर हरे भरे और फूलों से सजे हुए हैं, लेकिन एक ही युवक है जिसका गमला खाली है। कहा सभी को कि सब अपने गमले छोड़ करके चले जाओ, कल आपको परिणाम की घोषणा करेंगे। सब छोड़ के चले गए और फिर जिसकी घोषणा हुई, नाम की किसकी हुई, किसके नाम की घोषणा हुई, जिसका गमला खाली था। तो क्यों ऐसा हुआ? तो दूसरे दिन जब सब आए दरबार में और राजा ने घोषणा की तो सब हैरान रह गए कि हमारे राजा ने कहा था हरा भरा होना चाहिए, फूलों से भरा होना चाहिए, हमारा गमला इतना अच्छा और फिर भी जिसके गमले में कुछ भी नहीं होगा उसको राजा ने इनाम दिया या ये उत्तराधिकारी बनाया। तो राजा ने फिर कारण स्पष्ट किया कि जो आपको बीज दिए गए थे वो भुने हुए बीज थे, वो उगने वाले बीज थे ही नहीं। तो मुझे तो एक ईमानदार राजा चाहिए था अपने राज्य के लिए। तो ये स्पष्ट हो गया कि किसने ईमानदारी से लाया है गमला, जिसके गमले में कुछ भी नहीं उगा, क्योंकि भुने हुए बीज तो उग ही नहीं सकते हैं। और बाकी सबने क्या किया, झूठ का सहारा ले लिया कि किसी भी तरह से मेरा गमला हरा भरा दिखना चाहिए। तो कहा मुझे अपनी प्रजा के लिए एक ईमानदार, अपने राज्य के लिए एक ईमानदार राजा चाहिए था, इसलिए मैंने आप लोगों की ये परीक्षा की। तो इसीलिए कहा कि दुनिया में जो विजय होती है, हो सकता है कि उसमें हमने मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन विजय तो जो सत्य के मार्ग पर है उसकी ही होती है, और बाबा भी हमें यही कहते हैं। और जो सच्चा इंसान है वो सदा हर्षित रहता है, खुशी में नाचता है। इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नाच, क्योंकि उसके अंदर कोई उलझन नहीं होती, कोई मूंछ नहीं होती या कोई सोच विचार नहीं होता। स्पष्ट है ना, वो अंदर से सच्चा है, सच्चाई सफाई है उसके अंदर। तो फिर किसी भी तरह से जो झूठ के कारण व्यक्ति के अंदर ये होता है कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया या मेरी बात सामने आ गई तो क्या होगा, ऐसा उसके अंदर नहीं होता। इसलिए वो निश्चिंत रहता है और इसीलिए वो निशानी दिखाई है, सच्चाई की जो निशानी दिखाई है वो दिखाते हैं शास्त्रों में यादगार, कि जो श्री कृष्ण था उसने किस पर डांस किया, जो नाग था उसका फन, जो माया का रूप है, कोई ये तो प्रतीक है, कोई सचमुच कोई नाग पर डांस करने की बात नहीं है, लेकिन प्रतीक है कि वो जो माया किसी भी रूप में थी लेकिन उसको भी नाचने की स्टेज बना दिया। तो किसी भी रूप में माया है लेकिन उसमें भी हम हर्षित रह पाते हैं, उसमें भी मन सदा प्रसन्न चित रहता है, वो निर्भय स्थिति रहती है। और जो सच्चाई सफाई हमारी बाबा के साथ चाहिए, वो एक तो स्वयं के पुरुषार्थ की चाहिए, बाबा कैसे राजी होता है। तो बाबा ने जो भी हमें श्रीमत दी है वो श्रीमत प्रमाण, अगर हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, हम बाबा को पूरा अपना चार्ट क्लियर देते हैं रात को सोने से पहले, जैसे बाबा के श्रीमत है कि जो भी दिन भर में हुआ, अगर हमसे कोई गलती हो गई, किसी भी तरह से बाबा की श्रीमत का उल्लंघन हो गया हमसे और बाबा को हमने सुना दिया, सुनाने की विधि रखी है। कई बार सोचते हैं बाबा को तो पता ही है ना, तो भले ही बाबा को पता है लेकिन हम कैसे रियलाइज करेंगे, जब तक हम बाबा को नहीं सुनाएंगे तब तक हमें वो रियलाइजेशन नहीं होगा, तो परिवर्तन भी नहीं होगा। तो इसीलिए वो हमने बाबा को सच सच सुना दिया तो बाबा कहता है आधा आपका वहीं खत्म हो जाता है, जो उसका हिसाब बना वो आधा वहीं खत्म हो जाता है और बाकी के लिए भी अगले दिन आपको याद रहेगा कि मैंने बाबा को सुनाया है, तो आपको मदद मिलेगी अपने उस संस्कार को जीतने के लिए, जो आपकी कमजोरी है उसको जीतने के लिए बाबा की शक्ति आपको मिलेगी और धीरे धीरे आप अपनी उस कमजोरी पर विजयी बन जाएंगे। तो अगर हम सच्चे हैं बाबा से तो हमारा पुरुषार्थ सहज होता जाएगा। फिर दूसरा है, हम जब संबंध संपर्क में आते हैं तो संबंध संपर्क में आपस में हमारी कितनी सच्चाई सफाई है, यानी कईयों का व्यवहार कैसा होता है, अंदर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं। कलयुग में ऐसे ही है, दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं हम, सामने कुछ और पीछे कुछ। इसको कहावत में कहते हैं, सभी ऐसे नहीं होते लेकिन कुछ लोग जरूर होते हैं ऐसे कहावत के अनुसार कि मुख में राम बगल में चोरी, ये वाला व्यवहार रहता है उनका। माना मन में किसी के प्रति कोई भी नेगेटिविटी लेकर हम चलते हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, वैर भाव है ना, बदले की भावना है, कोई भी अगर ये अगर हमारे मन में मैल है, जिसको बाबा कहता है मन मैला है, तो शिव बाबा को हम आकर्षित नहीं कर सकते। जैसे अगर सुई पर जंक चढ़ी हुई है तो चुंबक को नहीं खींचती है, ऐसे ही ये भी हमारा मन अगर साफ नहीं है, दूसरों के प्रति जब भी हम व्यवहार में आते हैं अगर हमारे मन में वो सच्चाई सफाई नहीं है, अंदर बाहर हम एक हैं, तो फिर बाबा के दिल पर हम अपने आप को महसूस करते हैं, बाबा की दुआओं का हम अनुभव करते हैं। और ऐसे ही सेवाओं में हम सेवा कैसे करते हैं, तो बाबा कहता है दो तरह से सेवा करते हैं बाबा के बच्चे, एक है सच्चे दिल से सेवा करते हैं, जो भी सेवा मिली बाबा की, छोटी सेवा मिली, बड़ी सेवा मिली। हाँ, कई बार हो सकता है कि हमारी योग्यता बहुत ज्यादा है लेकिन सेवा मिली हमें छोटी सी, लेकिन फिर भी हमने उसे प्यार से स्वीकार किया और सच्चे दिल से उसे किया, तो बाबा कहता है उसमें 100% हमारा जमा होता है क्योंकि हमने सच्चे दिल से वो सेवा की। लेकिन कुछ लोग दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं, सेवा करना चाहिए क्योंकि सेवा से भाग्य बनता है, लेकिन उसमें सच्ची दिल नहीं है या बाबा के प्रति वो प्यार नहीं है, एक ड्यूटी प्रमाण कि ठीक है सेवा मिली है तो करना है, फिर वो गिनती भी करेंगे कि मैंने इतनी सेवा की और फिर इतनी सेवा की फिर भी मुझे उसका ये जो मिलना चाहिए, जो भी हम अपेक्षा रखते हैं कि मुझे वो मान मिलना चाहिए, मुझे वो पूछना चाहिए, अगर हम दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो फिर ये बातें भी उसमें आने लगती हैं। और ऐसी सेवा जो करते हैं, बाबा कहता है कि जो दिमाग से सेवा करते हैं फिर उनका वैसे ही जमा होता है, और जो दिमाग से ज्ञान भी सुनाते हैं दूसरों को वो बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाएंगे, ज्ञान की बातें अच्छी सुनाते हैं लेकिन अच्छा बना नहीं सकते, लोग भी अच्छा अच्छा कहेंगे और फिर खुद भी पॉइंट रूप नहीं बन सकते, पॉइंट्स अच्छी देंगे लेकिन खुद भी पॉइंट रूप योग में नहीं बन सकते। लेकिन जो सच्ची दिल वाली आत्माएं होती हैं, भले ही दिमाग के आधार पर हो सकता है कि वो थोड़ी कम हो, लेकिन बाबा की याद में वो एक सेकंड में पॉइंट स्थिति का अनुभव कर लेते हैं, और वो जिसको भी बाबा की बात सुनाएंगे वो उसके दिल को लगेगी, यानी वो दिल वाला बाप का बना देंगे, अच्छा अच्छा कहलाने वाले नहीं लेकिन बाबा का बनाने वाली वो आत्माएं होंगी। जैसे हमारी दादियों को हमने देखा, वो आज की दुनिया के हिसाब से जैसे आज सब पढ़े लिखे होते हैं, विशाल बुद्धि वाले होते हैं, ज्ञान सुनाने के अपने अपने तरीके हैं, है ना, बहुत सारी विधियां निकाल ली हैं, लेकिन फिर भी बाबा के उस क्वालिटी के बच्चे नहीं बनते। जब दादियां जो थी हमारी, कोई बहुत डिग्री वाली नहीं थी ना, हमारी दादी जानकी तो 3 क्लास ही पढ़े थे। गुलजार दादी तो कभी स्कूल ही नहीं गए, बाबा ने जो पढ़ाया बस उतनी ही उनकी पढ़ाई थी। लेकिन सेवा कैसे की, सारे विश्व की सेवा। दादी जानकी जी ने तो पूरे विश्व की सेवा की, और कभी किसी ने उनकी डिग्री नहीं पूछा, क्योंकि भगवान की इतनी बड़ी डिग्री उन्हें खुद मिली हुई थी। तो उन्होंने कितनी लाखों आत्माओं के जीवन को बनाया। तो ये बाबा कहता है कि जिनकी सच्ची दिल है वो सदा दिलाराम का बनाने वाले।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
दुनिया में भी हम लोग काम करते हैं, तो कई बिजनेस ऐसे हैं या कई जॉब ऐसे हैं जिसमें झूठ के बिना काम चलता ही नहीं है। जैसे कहा ना, आज की दुनिया ही झूठ की दुनिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। सिर्फ एक दादी प्रकाशमणि जी को हम सुनते थे, जब भी जुरिस्ट कॉन्फ्रेंस होती थी तो दादी ये बात जरूर सुनाती थी, और बहुत गर्व के साथ, कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। नहीं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बचाने के लिए, है ना, मानो कोई गलती हो गई हमसे तो हम अपनी गलती को सामने नहीं लाना चाहते। हमें लगता है कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए ना, कहीं मेरा मान कम ना हो जाए, अगर मेरी गलती सबके सामने आ गई, कहीं मुझे छोटा ना समझ लिया जाए, तो किसी भी तरह से उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके लिए अगर हमें झूठ भी बोलना पड़े, दो चार झूठ भी बोलने पड़े, तो वो भी बोलते हैं। ज्यादातर कलयुगी दुनिया में इस तरह से ही व्यवहार चलता है। ब्राह्मण बनने के बाद हमारी भाषा थोड़ी सी बदल जाती है। ऐसा नहीं हम झूठ का सहारा नहीं लेते, लेकिन उसको हम कहते हैं युक्ति से चलना पड़ता है। तो उसको झूठ को हम किस में बदल देते हैं? युक्ति में। दुनिया में कहते हैं झूठ बोलना पाप है। तो ब्राह्मण जीवन में हम क्या कहेंगे, पाप है या नहीं है? अगर झूठ बोलना पाप है तो वो पाप ही है। तो हम अगर ऐसा करते हैं स्वार्थवश या जो भी कारण बनता है, तो बाबा कहते हैं अच्छा चलो, दूसरों के सामने तो हम सच्चे बन गए गलत सलत बोल के। बाबा कहते हैं आजकल है ना, बातें बनाने में बहुत होशियार होते हैं ना, कई लोगों को बहुत अच्छी चतुराई आती है। तो दूसरों के सामने ऐसे पेश करेंगे कि इनके जैसा सच्चा कोई भी नहीं है। तो कहते हैं ना, सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में माहिर होते हैं। ये कई लोगों में कला होती है। जो रियल सच्चे होते हैं वो तो बोल ही नहीं पाते, तो उनको ही झूठा मान लिया जाता है। लेकिन जो झूठे होते हैं वो इतने होशियार होते हैं कि वो इस तरह से बात को रखेंगे कि कोई उनको गलत समझेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ठीक है, आपने अपने आप को बचा लिया, चतुराई से अपने आप को बचा लिया, लेकिन क्या बाबा को पता है या नहीं है? बाबा से छुपा सकते हैं? अच्छा, अपने आप से छुपा सकते हैं? मुझे भी पता है कि सच क्या है, है ना? तो दो जगह से हम नहीं छुपा सकते, और इसीलिए हमारे पाप का खाता बढ़ता जाता है। अगर हम इस तरह से व्यवहार में चलते हैं तो फिर सचमुच जो झूठ बोलना है वो हमारे पाप का खाता बढ़ाता है, और बाबा की दिल से भी हम उतर जाएंगे, क्योंकि सच्ची दिल नहीं है तो साहब राजी नहीं होगा। तो वो अविनाशी जो प्राप्ति हमें होनी चाहिए उससे भी हम वंचित हो जाते हैं। फिर कई बार जो हमारे खास माताएं हैं जिनको बंधन होता है, या जो भी बंधन वाले भाई बहन हैं, वो थोड़ी युक्ति इस तरह से लगाते हैं, क्योंकि घर वाले जो हैं वो तो छुट्टी नहीं देते हैं सेंटर पर आने की या मधुबन आने की, और उनको बहुत लगन होती है। जितना बंधन होता है उतना ही लगन ज्यादा होती है, वो लगन बढ़ती भी जाती है। तो उनको तड़प होती है आने की, तो फिर कुछ ना कुछ झूठ बोलकर, जिसे कहा युक्ति लगा करके, हम ये काम करते हैं कि मधुबन पहुंच जाते हैं। जैसे एक माता ने हमको सुनाया कि मैं जब भी अपने मायके जाती हूं तो मैं मायके में पूरा टाइम नहीं रहती, मैं मायके से मधुबन आ जाती हूँ, क्योंकि मैं ससुराल से तो नहीं आ सकती, और ससुराल वालों को क्या पता है कि मैं कहाँ गई हूँ, मायके, और मायके से मैं आई यहाँ बाबा के घर मधुबन। तो अगर हम इस तरह से युक्ति करते हैं उसको हम पाप नहीं कहेंगे। जैसे दुनिया में भी कहते हैं अगर किसी के कल्याण के लिए वो झूठ बोला गया है तो फिर वो झूठ पाप नहीं होता। तो अगर हम अपनी स्वउन्नति के लिए या बाबा के लिए कोई ऐसी युक्ति रचते हैं कि जिससे हम बाबा के नजदीक रहें, वो फिर हमारा झूठ झूठ नहीं है ना, वो हमारे स्वउन्नति के लिए, अपने कल्याण के लिए हमने उस विधि को अपनाया है। तो ऐसे ही बाबा को अगर हमें राजी करना है, जैसे बाबा दाता भाग्य विधाता वरदाता है, और अगर बाबा हमसे राजी हैं तो हमें ये तीनों प्राप्तियों का अनुभव बाबा से होता है। हम सच्चे हैं, जैसे शिव बाबा को हम भोला नाथ कहते हैं, तो सच्चे सीधे सरल लोगों को भोला कहा जाता है, तो इसीलिए बाबा कहता है मुझे भोले बच्चे बहुत पसंद हैं, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं है, झूठ नहीं है, हेरा फेरी नहीं है। जैसे कहा दुनिया में भी जो कई बार ऐसे बिजनेस होते हैं तो वो ईमानदारी से नहीं चल सकते, अगर चलेंगे तो उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो कई बार वो सवाल भी पूछते हैं कि क्या करें, अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में तो हमें थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है। फिर या कई जॉब में भी ऐसे करते हैं, जैसे रिश्वत लेना है या मिलावट, बिजनेस में होता है मिलावट करना है या गलत चीजें दे देना है अपने फायदे के लिए। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद हमें इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी बिजनेस होते हैं उनके अपने एक एथिक्स होते हैं कि किस अनुसार हमारा वो बिजनेस चलना चाहिए, जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचे या किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ तो गलत हो गया या हम तो ठगे गए। माना अगर ये फीलिंग किसी को आती है तो उसका पाप किसको लगने वाला है? तो कई बार हो सकता है कि हम थोड़ा कम धन कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे, थोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी को उससे दुख नहीं पहुंचा रहे तो हम दुआएं ज्यादा कमा रहे हैं। और वैल्यू किसकी है? धन तो कहां रह जाने वाला है, कितना खाएगा इंसान, रहेगा कितना? तो हमारी आवश्यकताएं तो सहज पूरी होती हैं, आवश्यकताओं के लिए इंसान को बहुत कमाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ज्यादा धन के पीछे हम क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारा लोभ, लालच, इच्छाएं वो सब इतनी होती हैं कि फिर वो चाहिए 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 में इंसान जो है वो गलत काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें उतना ही करना है जितनी हमारी आवश्यकता है, तो उस अनुसार हम चले। या जैसे वकालत करते हैं ना, तो वकालत बिना झूठ के चलती ही नहीं है। अगर झूठ का सहारा नहीं लेंगे तो कभी केस जीत ही नहीं पाएंगे। तो महात्मा गांधी जी के लिए प्रसिद्ध है, महात्मा गांधी जी वकील थे और उन्होंने अपने जीवन में प्रण लिया था कि मुझे कभी झूठ नहीं बोलना है, मुझे सत्य के आधार पर ही जीना है। उन्होंने वो सत्यवादी हरिश्चंद्र भी प्रसिद्ध है ना इतिहास में, कि उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा था बचपन में और तब से उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और जब देखा कि वकालत तो झूठ बोलने का धंधा है, तो शुरू में उन्होंने वकालत की तो केवल वही केस लेते थे जिनमें उन्हें लगता था कि इसमें सच्चाई है और इसको मैं सच्चाई के आधार पर जिता सकता हूं, उसके लिए मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और जब लगा कि नहीं चलता है तो उन्होंने वकालत ही छोड़ दी। और फिर उसके साथ साथ जो भारत की आजादी की लड़ाई है वो फिर पूरी तरह से उसमें लग गए और कभी भी उसमें भी उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया। तो इसीलिए कहते हैं सत्य और अहिंसा के वो पुजारी थे, है ना, उनके लिए भी ऐसे कहा गया। तो हमें ये देखना है कि क्या लिमिट है उसकी, बाबा की श्रीमत के अनुसार उस लिमिट को हम पार नहीं करें तो फिर वो गलत नहीं है। फिर बाबा हम पर राजी हैं, अगर दाता हम पर राजी है उसकी निशानी क्या होगी? कि बाबा के जो खजाने हैं ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये तीनों में हम भरपूर अनुभव करेंगे। माना ऐसी आत्मा को ज्ञान के सभी राज स्पष्ट होंगे, वो कभी ये अनुभव नहीं करेगी कि ज्ञान का ये राज तो मुझे नहीं मालूम है। तो ज्ञान में भरपूर, गुणों में और शक्तियों में कभी ऐसा अनुभव नहीं करेंगे कि ये गुण और शक्ति मेरे अंदर नहीं है। परसेंटेज हो सकती है उनकी, लेकिन नहीं है ऐसा उनके मुख से नहीं निकलेगा। तो ज्ञान, गुण, शक्तियों में वो संपन्न अनुभव करेंगे। फिर भाग्य विधाता हम पर राजी है, उसकी निशानी क्या होगी? शिव बाबा ने हमें कौन से भाग्य दिए हैं? तो चार प्रकार के भाग्य हैं ब्राह्मण जीवन में, तन, मन, धन और संबंध, या जन, तन, मन, धन, जन। ये जो चारों भाग्य हैं, वो चारों भाग्य हम प्राप्ति का अनुभव करेंगे। तो तन के भाग्य की निशानी, अब संगम युग में तन का भाग्य का मतलब ये नहीं कि हम तन से कभी रोगी ही नहीं होंगे, तन से हम सदा स्वस्थ रहेंगे, बाबा ने कहा नहीं, तन का हिसाब किताब तो हमें समय अनुसार, क्योंकि जैसा ये समय है उसके अनुसार हमें सारे हिसाब किताब तो चुकतू करने ही हैं, लेकिन हिसाब किताब चुकतू करते समय भी ऐसी आत्मा उसका कष्ट अनुभव नहीं करेगी, माना हिसाब किताब से दुखी नहीं होंगे, कर्म भोग को कर्म योग से सहज चुकतू करेंगे, जिसको बाबा कहते हैं दुआएं और दवा सूली से कांटे का अनुभव कराती है ना, भले ही कष्ट सूली जैसा होगा लेकिन अनुभव कैसा होगा, कांटा भी नहीं। बाबा कई बार कहते हैं कि जैसे कि वो फूल, फूल का तो फूल तो बल्कि खुशी देने वाला है, वो तो कोई दुख देने वाला होता ही नहीं, ऐसा अनुभव करेंगे। और कभी भी बीमारी से दुखी होकर के चिल्लाएंगे नहीं, बीमारी को चिल्लाएंगे। दुनिया में क्या होता है, थोड़ी भी बीमारी होती है तो चिल्लाने का मतलब बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, मैं बीमार हूं, मुझे ये हो गया, मुझे ऐसा क्यों हो गया, ये कब तक चलेगा, कब तक ये दवाइयां मुझे खानी पड़ेंगी, कैसे हम ठीक होंगे, माना बीमारी का ही चिंतन करते रहेंगे सारा समय। और हम बाबा के बच्चे बीमारी कॉन्शियस नहीं, क्या कॉन्शियस हैं, सोल कॉन्शियस। और जितना आत्मा स्वस्थ है उतना ही शरीर जल्दी स्वस्थ होता है, इसीलिए हम आज कहते हैं ना, ज्यादा बीमारियां कहां से शुरू होती हैं, मन से शुरू होती हैं। अगर मन स्वस्थ है तो 70% बीमारियों से तो हम वैसे ही बच जाते हैं। तो बाबा ने हमारी आत्मा हमारे मन को स्वस्थ रखा है, और इसीलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो अगर मन खुश है, हमारा मन सदा स्वस्थ है, तो शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाता है, दवाइयां भी जल्दी काम करती हैं। और इसीलिए हमने दादियों को देखा, हमारे जितने भी महारथी हुए हैं सबने अपने हिसाब किताब चुकतू किए हैं, लेकिन वो हिसाब किताब चुकतू करते वक्त उनकी जो अवस्था रही, जो मन की स्थिति रही, वो सदा ही निश्चिंत, और बीमारी के समय भी सेवा की उन्होंने, और सिर्फ छोटी मोटी सेवाएं नहीं, बड़ी बड़ी सेवाएं उनके द्वारा हुई। गुलजार दादी जी का हम देखते हैं, दादी जी के कारण ग्लोबल हॉस्पिटल बना, आज कितना विस्तार है हमारी मेडिकल की सेवाओं का, लेकिन उसका जो फाउंडेशन पड़ा, वो दादी बॉम्बे में हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और वहां से उसकी वो शुरुआत हुई कि डॉक्टरों के दिमाग में आया कि ऐसा हॉस्पिटल यहाँ माउंट आबू में होना चाहिए। तो ये है तन का भाग्य कि कभी भी तन की बीमारी हमें वो बीमारी का अनुभव नहीं कराएगी, और ही उस समय में हम सेवा के निमित्त बन जाएंगे। और मन का भाग्य क्या है, मन का भाग्य है कि मन सदा हर्षित रहेगा, और मन सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में होगा, क्योंकि अगर हम मन से भरपूर हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं, तो कभी भी कोई व्यक्ति वैभव का आकर्षण या लगाव झुकाव हमारे मन में नहीं होगा, तो मन मन मना भाव की स्थिति में सहज स्थित हो जाएगा। एक बाप दूसरा न कोई, मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, हमारे ब्राह्मण जीवन में मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई, हमारे सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां एक बाबा से हैं, और मन सहज ही इस स्थिति को अनुभव करेगा, ये मन का भाग्य है। और धन का भाग्य क्या कहेंगे, धन का भाग्य ना, वैसे तो हमको अविनाशी ज्ञान धन मिला है, लेकिन फिर भी स्थूल धन का भी महत्व है, तो जीवन निर्वाह के लिए हमें स्थूल धन भी चाहिए। तो बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में जो स्थूल धन है वो आपको इतना नहीं मिलेगा कि आप करोड़पति बन जाए। आजकल लखपति तो कॉमन बात है, तो लखपति की बात नहीं, लेकिन चाहत क्या होती है, तो बाबा करोड़पति बनाने वाला नहीं है। करोड़पति बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, साहूकार बनते ही क्या होगा, साहूकारों के लिए बाबा क्या कहता है, बाबा कौन है, गरीब निवास है साहूकार निवास है, गरीब निवास है। तो आज बाबा के हम इसलिए हैं क्योंकि हम साधारण हैं। अगर हम साहूकार होते तो हम बाबा के पास आते ही नहीं, तो इसीलिए बाबा हमें वो धन की उतना धन प्राप्त नहीं कराने वाला, लेकिन हमारे रहने के लिए, खाने के लिए, जीवन आराम से चले उसके लिए जितना चाहिए वो हमें मिलता रहेगा। और फिर सेवा के लिए हमें धन की जरूरत होती है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे ही मिलकर बाबा की सेवाएं करते हैं, हम ही सहयोगी बनते हैं, क्योंकि हम ही अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो फिर अगर वो धन हमारे पास है तो हम सेवा में लगाते हैं, अगर नहीं है तो इच्छा होती है काश मेरे पास होता तो हम भी बाबा की सेवा में लगाते। तो यहाँ बाबा क्या कहते हैं, अगर मेरी सच्ची दिल है कि मुझे बाबा की सेवा में लगाना है तो बाबा कहीं ना कहीं से किसी को भी निमित्त बना देगा और आपको वो धन मिल जाएगा। आपको भी आश्चर्य होगा कि मैंने तो सोचा ही नहीं था ये मेरे पास अभी, और फिर आप उसे बाबा की सेवा में यूज कर पाएंगे। किसी को है ऐसा अनुभव कि हम चाहते थे बाबा की सेवा के लिए और अचानक ही वो हमारे को मिल गया, हाथ उठा सकते हैं जिनको ऐसे अनुभव, देखो कितने लोग हैं जिनको ऐसा अनुभव है। तो बाबा ने कहा सच्ची दिल है तो बाबा आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेगा और आप सेवा में सफल कर पाएंगे। लेकिन कई लोग कैसे धन लगाते हैं, थोड़ा स्वार्थ होता है कि मुझे थोड़ा मैं धन लगाऊंगा तो मुझे मान मिलेगा, मेरा नाम हो जाएगा। तो अगर कोई इच्छा से हम सोचते हैं तो फिर बाबा हमारी वो आवश्यकता पूरी नहीं करेंगे। और बाबा कहते हैं सच्चे दिल से लगाएंगे तो वो सेवा में तो जितना चाहिए लगेगा ही, और ही आपका भंडारा और भंडारी भी भरपूर हो जाएंगे। और न सिर्फ भाई बहनों को लेकिन हमारी टीचर्स बहनों को भी ये अनुभव होता है जो सेंटर संभालते हैं कि कैसे बाबा छवि भी सेवाओं के बड़े बड़े कार्य होते हैं, कहाँ कहाँ से कौन निमित्त बन जाते हैं और बाबा के कार्य हो जाते हैं, बहनों को अनुभव नहीं है। तो ये अनुभव बाबा हमें कराता है अगर हम सच्चे दिल से उस धन को बाबा की सेवा में लगाना चाहते हैं। और ऐसे ही जन का भाग्य, तो जन में कौन आते हैं, एक तो हमारा ये ईश्वरीय परिवार है, अलौकिक परिवार है, दूसरा हम प्रवृत्ति में रहते हैं तो हमारा लौकिक परिवार भी है। तो ये जो भी लौकिक अलौकिक संबंध हैं, इन संबंधों में 95% से हमें स्नेह और सहयोग मिलेगा। अगर बाबा राजी हैं और वो भाग्य हमें मिला है तो 95% जो है वो हमारे लिए स्नेही होंगे। केवल 5% से हमारा हिसाब किताब चुकतू होगा। हिसाब किताब भी आपसी संबंधों में हमें चुकतू करने ही है, क्योंकि इतने जन्मों से हम साथ चले हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे हिसाब किताब बने हुए हैं। तो बाबा कहता है ये हिसाब किताब भी हमें कैसे चुकतू करना है, शुभ भावना और शुभ कामना से हम इसको चुकतू करते रहे, क्योंकि ये आत्माएं हमारे लिए परीक्षा के निमित्त होती हैं। कोई ना कोई विघ्न पैदा करते रहेंगे वो हमारे लिए, तो फिर अगर हमने शुभ भावना शुभ कामना रखी तो वो किताब पूरा हो जाएगा। और अगर हम भी उनके जैसे हो गए, होता है दुनिया में क्या करते हैं लोग, टिट फॉर टैट, तुम ऐसा कर रहे हो तो हम भी आपके लिए ऐसा ही करेंगे तो फिर क्या होगा, और ही खाता बढ़ता जाएगा। और अभी क्या समय है, खाता खत्म करने का समय है, बढ़ाने का समय है। अभी तो हमें कर्म बंधन मुक्त बनकर के, कर्मातीत बनकर के वापस जाना है, तो हमें ये सारे हिसाब किताब यहीं चुकतू कर देने। तो बाबा ने ये जो विधि बताई है, इस विधि अनुसार हमें चुकतू करना है। तो कभी भी किसी के पार्ट को देखकर या कोई हमारे साथ क्या करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों चलता है, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए, होता है ना, तो हम प्रश्नचित हो जाते हैं। तो प्रश्नचित होना इसका मतलब नॉलेजफुल नहीं बने। बाबा ने तो हमें त्रिकालदर्शी बनाया, बाबा ने हमें सारे राज समझा दिए कि कोई आत्मा ऐसा पार्ट बजा रही है तो क्यों बजा रही है। तो फिर कभी भी उनके संबंध संपर्क में आते हुए हम प्रश्नचित नहीं होंगे, लेकिन प्रसन्न चित रहेंगे। कभी भी व्यस्त संकल्पों में किसी भी आत्मा को देख करके हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। इसको हम कहेंगे बाबा से वो शक्ति, वो दुआएं हैं हमें कि किसी के भी पार्ट को देखते हुए भी हम खुश रहते हैं, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहता है दुआएं दो और दुआएं लो। खुद भी संतुष्ट रहो, दूसरों को भी संतुष्ट करो, सुख दो और सुख लो, ना दुख दो और ना दुख लो। तो ये हमारा आपस का जब संबंधों में हम आते हैं, ये हमारा व्यवहार, तो इसका मतलब भाग्य विधाता बाप हम पर राजी है। फिर वरदाता शिव बाबा वरदाता है, और वरदाता राजी है उसकी निशानी क्या होगी। वरदाता को भी राजी करने की विधि बहुत सहज है, बाबा कहते हैं। बाबा तो हमें वरदानों से संपन्न करने वाले हैं, सद्गुरु हैं, रोज ही हमें बाबा से वरदान मिलते हैं। तो वो वरदान कब मिलते हैं, बाबा को जो पसंद है, बाबा को पसंद है एक शब्द, तो उसमें सबसे पहले है एक व्रता। अगर हम एक व्रता हैं, एक व्रता जैसे कहा एक बाबा दूसरा ना कोई, एक से ही मेरे सर्व संबंध हैं, तो वरदाता हम पर राजी हैं। फिर कई कहते हैं कि बाबा, बाबा से तो सर्व संबंध हैं, लेकिन जब सेवा करते हैं या कोई हमें मुश्किल होती है या कोई परिस्थिति होती है तो हमें सहयोग चाहिए, साथी चाहिए, अपने दिल की बात करनी है, तो कोई एक तो ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, ब्रह्मा बाबा आकारी हैं। अगर उनसे हमें मिलन बनाना है तो फिर क्या करना पड़ता है, उनके समान ही बनना पड़ता है, आकारी निराकारी बनना पड़ता है। तो साकार में भी कोई चाहिए, तो क्या कहेंगे, चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए, जिन जिन को चाहिए वो हाथ उठा सकते हैं। अच्छा, कुछ कुछ को चाहिए, तो बाबा ने देख लिया हा? तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं, अगर हमने एक को भी साथी बनाया, जिस भी रूप से सखा बनाया, ज्यादातर हम ऐसे ही सेवा साथी हैं, हमारे ज्यादा कुछ नहीं, बस सेवा में सहयोग के लिए ये हमारे साथी हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा के अलावा किसी एक और में भी बुद्धि गई तो क्या होने वाला है, उस आत्मा के साथ हमारा कर्म का हिसाब किताब जरूर बनेगा। और कर्म का हिसाब किताब बनते ही क्या होगा, अगर हम थोड़ा भी किसी के लगाव में, माना थोड़ा बहुत तो फिर झुकाव हो ही जाता है उनकी तरफ जो हमारे सहयोगी हैं, स्नेही हैं, तो फिर बाबा से योग में जो हमें अनुभव होना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, जो प्यार का अनुभव होना चाहिए, वो कम हो जाएगा। और हम योग करेंगे, याद करेंगे बाबा को, और याद आएगी वो आत्मा जो हमारी स्नेही और सहयोगी है। तो बुद्धि का योग कहाँ लग रहा है, बाबा से लग रहा है, आत्मा से लग रहा है। फिर योग में कहेंगे योग लगता नहीं, बाबा को याद तो करते हैं लेकिन वो शक्ति का अनुभव होता नहीं, तो हमेशा ही कंप्लेन करेंगे। और क्यों नहीं हो रहा, क्यों वो संतुष्टता नहीं हो रही, क्योंकि हमारी बुद्धि योग बाबा के अलावा और भी कहीं और है। तो बाबा कहते हैं बाबा तो छुट्टी दे देगा लेकिन परेशान कौन होगा। तो इसीलिए भक्ति में भी देखा कि जिन्होंने एक भगवान को ही अपना सब कुछ माना, समय आने पर भगवान ने उनको भी मदद की, भक्तों को भी मदद करता है भगवान। तो यहां तो आप बच्चे हो, तो जभी भी कोई ऐसी बात हो तो किसी भी मनुष्य आत्मा की जगह कौन याद आना चाहिए, बाबा याद आना चाहिए। नहीं तो अंत के पेपर में भी क्या होगा, अंत का भी पेपर क्या है, कितनी भी बातें बुद्धि को खींचने वाली हों, है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा है ना, तो भी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए, एक बाबा की तरफ, तभी पास विद ऑनर होंगे। नहीं तो हम पास विद ऑनर नहीं हो सकते, पास नहीं हो सकते। तो ये अभी से ही हमारा अभ्यास होगा तभी हम इस अंतिम पेपर में भी पास होंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि का मोह हमारा अगर अभी से अभी भी लगा हुआ है तो अंत में भी हमें बाबा ही याद आए ऐसा नहीं होगा। तो एक बाबा, बाबा से ही मेरे सर्व संबंध हैं, तो फिर वरदाता हमारे पर राजी रहते हैं और हमें ये ब्राह्मण जीवन इतनी सहज लगेगी जैसे बाबा के वरदानों से ही हम चल रहे हैं, पल रहे हैं, उड़ रहे हैं, कोई मेहनत का अनुभव नहीं होगा। उसको बाबा कहते हैं बाबा की मोहब्बत में है तो मेहनत खत्म हो जाती है। तो हमें ये जीवन इतनी श्रेष्ठ और इतनी लाइट अनुभव होगी। और फिर एक शब्द कौन सा, एक मत पर चलने वाले, एक तो हो गया एक व्रता, दूसरा हो गया एक मत, एक बाबा की मत पर ही चलने वाले। अनेक मते हैं दुनिया में लेकिन बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं। और फिर एक रस स्थिति में रहने वाले, एकांत का अनुभव करने वाले, है ना, जिसमें भी एक एक है, ये बाबा को प्रिय है तो हम बाबा को राजी कर लेते हैं। और अगर बाबा राजी हैं तो बाबा की सब प्राप्तियों का हम वर्तमान में भी अनुभव करते हैं और भविष्य की प्रारब्ध तो हमारी है ही है। फिर जो सत्यता बाबा कहता है स्पष्ट करते हो आप, दुनिया में भी हम सत्य ज्ञान सुनाने के निमित्त हैं, बाबा हमको सुनाते हैं और बाहर में हम बाबा के बच्चे सुनाते हैं, तो सत्यता को भी हमें निर्भयता से स्पष्ट करना है। सत्य ज्ञान को सुनाने की विधि क्या है, अथॉरिटी से सुनाओ लेकिन स्नेह और निर्माणता हो उसके अंदर, रहम का भाव हो। जैसे बाबा की मुरली हम सुनते हैं तो बाबा हमें सब शिक्षाएं देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बात बाबा हमें कहते नहीं है, लेकिन कैसे कहते हैं, आज भी था ना मीठे बच्चे, कितनी बार बाबा मुरली में हमें मीठे बच्चे कह करके कहते हैं, तो उतना स्नेह से वो हमें कहते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि बाबा ने इतनी कड़ी बात कह दी, है ना, वो सहज शिक्षा हमें स्वीकार हो जाती है कि बाबा ने जो भी कहा वो हमारे भले के लिए कहा। तो इसीलिए कहा कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय लगने वाला सत्य बोलो, ना कड़वा सत्य नहीं। संस्कृत में भी कहते हैं सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, है ना, सत्य बोलो लेकिन मीठा लगने वाला, अच्छा लगने वाला सत्य बोले, यानी सत्यता को भी सभ्यता के साथ कहो तो वो सत्य आपका स्वीकार होगा। अगर हम कहें अरे मैं तो सच बोलता हूं और जोश में आ जाते हैं, कई लोग सच बोलते हैं ना तो थोड़ा गुस्से में आके जोर जोर से बोलते हैं, मेरी सच्ची बात है मैं तो सच बोल रहा हूं, फिर क्या होगा, वो लोगों को क्या लगेगा, ये तो सिद्ध कर रहे हैं या ये तो जिद कर रहे हैं। तो आप सच्चे भी होंगे तो भी माने नहीं जाएंगे, तो सत्य बात को भी स्पष्ट करने का तरीका, यानी सत्य ज्ञान को भी हमारा स्पष्ट करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो भी बाबा हमें समझाते हैं। और बाबा हमेशा कहते हैं नब्ज भी देखो आत्मा की, कि उसे क्या चाहिए। सीधा सीधा ज्ञान अगर हम किसी नए को सुनाते हैं तो हो सकता है कि उसको वो बातें थोड़ा भारी लगेंगी ना, लेकिन उसको उस समय क्या चाहिए उस अनुसार उनको सुनाते हुए हम धीरे धीरे मुख्य ज्ञान जो अपना है उस ज्ञान की तरफ हम लेकर के आए। तो अथॉरिटी भी हो लेकिन उसके साथ साथ निर्माणता भी हो। तो जो भी सत्संग करते हैं दुनिया में, दुनिया की जो कथाएं होती हैं वो तो अपने प्रकार के शास्त्रों की कथाएं होती हैं, लेकिन हमारा जो सत्संग है वो सभी आत्माओं को सत्य ईश्वर के संग में लाने वाला है, बाबा का बनाने वाला है। डायरेक्ट भगवान के संबंध में आकर के वो बाबा के वर्से के अधिकारी बन जाएं। इस भावना से हम सबको ज्ञान सुनाते हैं। तो इस तरह से ये सत्यता की शक्ति, जिसे बाबा कहता है, बाबा आया ही है सत्य की दुनिया की स्थापना करने के लिए, क्योंकि वो स्वयं ही सत्य है। तो हम सब बाबा के इस कार्य में तभी मददगार बन पाएंगे जब हम स्वयं भी उस सत्यता की शक्ति के आधार पर चलेंगे। ओम शांति।